हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। तारा परी सोचने लगी थी कि अगर अमन आज रात को उन अधिकारियों से मिलने जाएगा तो उसके लिए परीलोक जाना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो परीलोक जाना चाहती थी। परीलोक जाकर वो अपनी माँ की जादुई छड़ी बचाना चाहती थी। तारा परी ने सोचा इससे अच्छा मौका उसे फिर नहीं मिलेगा, और वैसे भी अगर अमन उसके साथ रात में घर पर रहा तो उसके लिए परीलोक जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अमन उसे बिस्तर पर एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता था, बल्कि उसके बेहद करीब अपनी बाहों में लेकर ही सोया करता था। इसलिए तारा परी को ये रास्ता बिल्कुल ठीक लग रहा था। कहीं ना कहीं अब दोनों ही अपनी सोच को लेकर सोचने लगे थे, और दोनों को इसी बात की चिंता थी कि वे एक दूसरे के बगैर रात कैसे गुजारेंगे। जल्दी ही तारा और अमन दोनों मिलकर ऑफिस का सारा काम निपटाने लगे थे। भले ही अमन अपने ऑफिस में काम कर रहा था और तारा अलग अपने ऑफिस में काम कर रही थी, क्योंकि ये दुनियावी काम थे जो उन्हें दुनिया की नज़रों में करने ही थे, लेकिन उनके दिलो दिमाग में तो एक दूसरे से अलग होने की अलग ही तरह की जंग चल रही थी। दोनों को कुछ अजीब से एहसास हो रहे थे, लेकिन वे एक दूसरे से कह नहीं पा रहे थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि आज उनकी ज़िंदगी की कितनी बड़ी रात होने वाली थी। तारा ने परीलोक जाने का निर्णय लिया था, और अमन आज उन अधिकारियों से मिलने जा रहा था जिन्होंने उसकी फैक्ट्री पर स्टे ऑर्डर लागू किया था। कहीं ना कहीं दोनों को पता था कि आज वे दोनों कहीं ना कहीं बाहर जाने वाले हैं, लेकिन उनके मन में यही बात आ रही थी कि तारा सोच रही थी कि वो अमन के बिना कैसे रहेगी, और अमन सोच रहा था कि वो तारा के बिना कैसे रहेगा। दोनों के दिलो दिमाग में अजीब सी हलचल चल रही थी। इसी बीच शाम के 8 बज चुके थे। अमन तारा के पास आया और दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर देखते रहे। कहीं ना कहीं दोनों के मन में सवाल चल रहा था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को कह नहीं सकते थे। तभी तारा खड़ी होकर अमन के ठीक सामने जा खड़ी हुई, और अचानक उसने उसे गले से लगा लिया। कहीं ना कहीं तारा को तो ये लग रहा था कि परीलोक जाने के बाद अगर वो वापस नहीं आ पाई तो वो फिर अमन से कभी नहीं मिल पाएगी। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए तारा का दिल बार बार भर रहा था। वहीं अमन ने तारा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ जान, इतना क्यों परेशान हो रही हो? सिर्फ आज रात की ही तो बात है, और ऐसे भी अगर गरीब मजदूरों का सवाल नहीं होता, मैं कभी भी रात को तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाता। और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुमसे एक पल के लिए भी अलग नहीं रहूंगा, तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तभी तारा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए अमन से कहा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जाकर अपना काम पूरा कीजिए, और आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा, मैं आपको ज़्यादा याद नहीं करूँगी। जैसे ही तारा ने ये कहा, अमन मुस्कुराने लगा। उसने आगे बढ़कर तारा के माथे को चूमा और कहने लगा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ मेरी बीवी मेरे आने का इंतज़ार करेगी, और हाँ, मैंने ड्राइवर को बोल दिया है, वो तुम्हें घर छोड़ देगा, और तुम मम्मी पापा को उसके बारे में कुछ मत बताना, मैं अपने आप उनसे बात कर लूँगा। तारा ने अमन की बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। जैसे ही तारा अपने केबिन से बाहर जाने लगी, अमन ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया, और अपने होठों को उसके होठों पर रखकर स्मूथली किस करने लगा। तारा भी शायद यही चाहती थी, और वो अमन के बालों में अपना हाथ घुमाने लगी। अमन कितनी देर तक तारा को पूरी तरह किस करता रहा ये पता नहीं। जब तारा को लगा कि अगर उसने अमन को नहीं रोका तो अमन उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था, तब तारा ने थोड़ा सा हाथ उसकी छाती पर रखकर उसे अपने से अलग किया और कहने लगी, अगर आप इस तरह का बर्ताव करेंगे तो हम लोगों के लिए अलग होना काफी मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको अपना काम पूरा करना चाहिए। वैसे भी कुछ घंटे की ही बात है, मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ घंटों के अंदर अंदर आप वापस आ जाएंगे। जैसे ही तारा ने ये कहा, अमन कहने लगा, क्या करूं, तुमसे दूर रहा नहीं जाता है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ घंटों के लिए नहीं, पता नहीं कितने दिनों के लिए तुमसे दूर होने वाला हूँ। जैसे ही अमन ने ये कहा, तारा का दिल कांप कर रह गया। तभी तारा ने अमन के होठों पर अपनी उंगली रख दी और कहने लगी, आपको ऐसा कुछ भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है, केवल कुछ घंटे की बात है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सही सलामत लौट कर आएंगे, और मुझे भी आप अपने पास पाएंगे। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए तारा ने कहा। तभी अमन हल्का सा मुस्कुराता हुआ कहने लगा, चलो मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर अमन तारा का हाथ थामकर उसे गाड़ी तक ले आया, और उसने खुद गाड़ी का दरवाजा खोलकर तारा को गाड़ी में बिठाया। और इतना ही नहीं, कितने सारे बॉडीगार्ड्स की गाड़ियों को उसने तारा के ठीक पीछे पीछे भेज दिया, क्योंकि तारा की सुरक्षा को लेकर वो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। भले ही उसे अक्षित खुराना से किसी भी तरह का कोई डर ना हो, लेकिन वो फिर भी किसी को ये मौका नहीं देना चाहता था कि कोई उसके तारा को तकलीफ पहुंचाने की जरूरत करे। जब तक तारा की गाड़ी अमन की आंखों से ओझल नहीं हो गई, तब तक अमन तारा की गाड़ी को नम आंखों से देखता रहा, और तभी उसके कंधे पर उसे किसी के हाथ का एहसास हुआ। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो अमित पीछे खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था और कहने लगा, क्या तारा जी को तुमने घर भेज दिया है? तभी अमन ने अमित से कहा, हाँ मैंने तारा को घर भेज दिया है, और अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें ही बुलाने वाला था। अच्छा तुम एक काम करो, तुम उन अधिकारियों से पता करो कितनी देर में आ रहे हैं, क्योंकि मैं जल्द से जल्द मीटिंग खत्म करके वापस घर जाना चाहता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है 1 से 2 घंटे के अंदर मीटिंग खत्म हो जाएगी। मैं रात के 11 बजे तक घर वापस चला जाऊंगा। जैसे ही अमन ने ये कहा, अमित अंदर ही अंदर चिढ़कर रह गया और सोचने लगा कि क्या ये इंसान अपनी बीवी से कुछ पल के लिए अलग नहीं रह सकता है। एक ही रात की तो बात है, मन ही मन में सोचने लगा, इस एक रात के बाद तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से पलट जाएगी अमन सिंह राठौर, तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना प्लान मजबूत करते हुए अमित ने अमन को मुस्कुरा कर कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम चलो तो सही मेरे साथ, उसके बाद हम वहाँ जाकर डिसाइड कर लेंगे और जल्दी से मीटिंग खत्म करने की कोशिश करेंगे। अमित ने उस वक्त बातों पर लीपापोती कर दी थी और अमन को लेकर जाने के लिए तैयार हो गया था। वहीं दूसरी ओर तारा परी घर पहुंच गई थी। जैसे ही वो घर गई, उसे इस बात का पता चला कि उस वक्त उसके सास ससुर यानी करिश्मा जी और अमरिंद्र जी घर पर नहीं थे। तारा के नौकर ने उसे बताया कि इस वक्त वे लोग किसी पार्टी में गए हुए हैं। जैसे ही तारा ने ये सुना, वो थोड़ी सी हैरान हो गई और कहने लगी, अच्छा वे किसी पार्टी में गए हैं, ओके। तारा के मन में इस बात की तसल्ली थी कि चलो वो आसानी से अपना काम पूरा कर सकती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि पार्टी 11 बजे तक चलेगी और उसके बाद जब वे घर आएंगे तो वे तारा को परेशान करने की कोशिश नहीं करेंगे। तारा अपने कमरे में है या नहीं, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए तारा ने अपने मन में अपने आप को तसल्ली दी और जल्दी से अपने कमरे में जाने लगी, क्योंकि वो एक भी पल बर्बाद नहीं करना चाहती थी।
वो जल्द से जल्द परीलोक में जाना चाहती थी और वो अच्छी तरह से जानती थी कि परीलोक में जाने के लिए उसे सबसे पहले कड़ी तपस्या करनी होगी, क्योंकि परीलोक से वो एक फल खाकर पृथ्वीलोक पर आई थी और अब परीलोक में वापस जाने के लिए उसे कोई फल नहीं मिलने वाला था। उसे किसी न किसी तरह से परीलोक की शक्ति का प्रयोग करना था जिससे वो सीधा परीलोक में जा पाए। ये सोचते हुए तारा जल्दी से अपने कमरे में आ गई और अचानक कमरे में आकर अपने आप को इंसानी कपड़ों से आज़ाद कर दिया। इंसानी कपड़ों की जगह उसने परीलोक के बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहने, जिसमें सोने चांदी की चमक थी और एक बहुत ही खूबसूरत सा ताज तारा परी के सर पर था। तारा एकदम बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, वो अपने असली परी रूप में आ गई थी, क्योंकि उसे परीलोक जाना था और परीलोक वो इंसानी कपड़ों में नहीं जा सकती थी। इसीलिए तारा ने सबसे पहले अपना वेश बदला था और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से उसका बेबी बम्प हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। तारा अपने बच्चे को देखकर मुस्कुरा उठी और तभी तारा ने हल्का सा अपने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए, अपने पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए अपने बच्चे का सर रियलाइज़ करने लगी और सोचने लगी, पता नहीं कब तुम मेरी ज़िंदगी में आओगे, मेरी ज़िंदगी की सारी मुसीबतें दूर कर दोगे। कहीं ना कहीं तारा को पूरा यकीन था कि उसका बच्चा जैसे ही इस दुनिया में आएगा वो सब कुछ ठीक कर देगा। तारा जल्दी ही अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल करते हुए एक काले रंग का घेरा बनाकर उसके अंदर बैठ गई और जल्दी ही उसने अपनी आंखें बंद करके परीलोक जाने के मंत्र का उच्चारण करने लगी। तारा ने बड़े ही जोरों शोरों से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। अचानक धीरे धीरे तारा का शरीर गायब होने लगा और देखते ही देखते तारा अब आकाश में तैरने लगी। वहीं दूसरी ओर अमन उस शहर के एक मशहूर नाइट क्लब में पहुंच गया था। अमित उसे जानबूझकर एक ऐसे क्लब में ले गया था जहां पर कितनी सारी लड़कियां थीं जो काफी कम कपड़ों में थीं। उसने जानबूझकर ऐसी ही जगह उन अफिकारियों से मिलने के लिए चुनी थी कि अगर अमन यहां आएगा तो वो तारा को जरूर भूल जाएगा, उसे सिर्फ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी और तारा से भी बढ़कर एक से एक खूबसूरत लड़कियां दिखाई देंगी। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए अमित जल्दी ही अमन को वहां ले आया था। अमन को वहां का शोर शराबा, वहां का माहौल, स्पेशली लड़के लड़कियां आपस में बिल्कुल चिपक चिपक कर डांस कर रहे थे और कुछ लड़के लड़कियां तो कहीं ना कहीं कोने में खड़े होकर एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये सब देखकर अमन को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये जगह उसे बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। वो गुस्से से अमित की ओर घूरते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली थी इस मीटिंग के लिए? तभी अमित ने अमन को शांत करते हुए कहा, मेरे दोस्त, मैं चाहता तो तुम्हें एक सिंपल से होटल में भी मीटिंग करवा सकता था, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमें यहाँ पर उन्हें मीटिंग करने के बहाने से उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करनी है ताकि वे किसी तरह का कोई इशू ना करें। लेकिन अगर तुम चाहो तो काफ़ी पैसे ऊपर किसी पार्टी को देकर इस काम को करवा सकते हो, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानते हो जिन्होंने स्टे ऑर्डर लगवाया है उनसे ही हम हटवा सकते हैं, बड़े ऑफिसर्स भी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी अमन ने अमित की ओर देखते हुए कहा, तो तुम्हें इस मीटिंग के लिए इस बेकार सी जगह को चुनने की क्या ज़रूरत थी? तभी अमन अमित को कुछ कहने ही वाला था कि तभी अमन ने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत सी एकदम शॉर्ट नाइटी में काले रंग के कपड़ों में एक लड़की आ रही थी जो कमाल की खूबसूरत लग रही थी। उसका आधा से ज़्यादा जिस्म साफ साफ दिखाई दे रहा था।